भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 25। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। भगवान इस श्लोक में बताएंगे कि ये भगवान ने जो इससे पहले वो बताए हैं कि आत्मा ना घुलनशील है और ना खंड खंड किया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जाता है, वो इस प्रकार का विवेचना भगवान क्यों दे रहे हैं। अर्जुन पूछ सकते हैं कि आप सीधे सीधे क्यों नहीं बता रहे कि आत्मा क्या है, जैसे किसी से पूछा जाए कि मृदंग क्या है, आप बोलेंगे वो घड़ी नहीं है, घड़ी नहीं है, इट इज नॉट अ क्लॉक। सही है ना? सही है। वो इंसान नहीं है, सही है। वो व्हाटएवर मोबाइल नहीं है, करताल नहीं है, तो ये भी एक तरह से सही डेफिनेशन हुई, लेकिन इससे फिर भी अंदाजा नहीं लग पा रहा कि मृदंग है क्या। अरे सही से बोलो ना, ठीक से बोलो ना, मृदंग क्या है। तो भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में कि वह ऐसी भाषा का उपयोग क्यों कर रहे हैं। और आपको याद है मैंने क्या बताया था इसके बारे में, ऐसी भाषा का उपयोग क्यों कर रहे हैं, नैति नीति वाली, न इति वाली भाषा का उपयोग क्यों कर रहे हैं, पहुंच नाना करते हुए हम सही तर्क तक पहुंच सके, ये हमारी मदद करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि आत्मा इस जगत की किसी भी भौतिक वस्तु से परे है, इसलिए उसको समझाने के लिए भौतिक वस्तु का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। तो नेगेशन में उदाहरण देकर के अंदाजा लगाया जा रहा है कि किस हम आत्मा जो है उसे कल्पना करने का प्रयास किया जा रहा है। अब उस बातों को भी खंडन कर रहे हैं, कल्पना के भी परे है कि कल्पना की शक्ति बुद्धि की शक्ति के द्वारा होती। जैसे आज एक भक्त मुझसे पूछ रहे थे, प्रभु जी मेरे भी सर में दर्द होता है, बहुत मैं सोचता हूँ, हम सोच भक्ति में श्रवण करने के बाद बहुत सोचने से सर दर्द होता है। हमने कहा नहीं, बहुत श्रवण करने से सर दर्द तो नहीं होता। अब आप, मैं इनको बोला कि सर दर्द हो रहा है क्योंकि हम लोग शारीरिक चेतना में। मैंने कहा क्या आपने मुझसे कभी ये प्रश्न किया कि मेरा कुर्ता फट गया है प्रभु जी, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। क्या आज तक किसी भक्त ने किसी अथॉरिटी के पास आके बोला प्रभु जी मेरा कुर्ता फट गया, मैं इस्कॉन में कैसे रहूँ? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम अपने कुर्ते से अपनी पहचान नहीं करते और अपने शरीर से बहुत पहचान करते हैं, शरीर से संबंधित लोगों से बहुत पहचान करते हैं। तो वहां जब थोड़ी सी परेशानी आती है तो इस समय हमारी जो चेतना है उसमें हम प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर आपको याद ही नहीं रहे कि आपने कौन से देह में है तो कोई फर्क पड़ेगा आपको? जैसे आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी मैं एक पीला कुर्ता और ऑरेंज मतलब थोड़ा अलग कलर का धोती पहन लिया, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं जब करते करते दर्शन आरती होगी, दर्शन आरती के बाद भक्त बोलेंगे क्या पहन क्या है, मैंने कहा मैं शरीर तो नहीं हूं, तुम्हें तो कपड़ा कैसे हो सकता हूं। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा आसक्त है शरीर में तो वो इस कपड़े की निंदा को अपनी निंदा मानता है। जब बोला जाता है कभी भक्तों को प्रभु आप तो बड़े चमक रहे हो, क्या अर्थ है? आपका धोती कुर्ता चमक रहा है और हम सोचते हाँ मैं चमक रहा हूं। तो इस प्रकार की भावना से भगवान हमको बाहर निकालने के लिए इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तुम ये नहीं हो, आत्मा इसम नहीं है। वस्तुतः आत्मा के बारे में पॉजिटिव डेफिनेशन भगवान देंगे 7वें अध्याय में और फिर 15वें अध्याय। तो जरा देखा जाए कि भगवान इस प्रकार की क्यों बात बोल रहे हैं। अध्याय 2 का 25वें श्लोक को देखिए, 24वां कल हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं क्लास, ठीक है। अव्यक्तोयम अचिन्तोयम अविकारोयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनम् नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अव्यक्त यहाँ पे अर्थ है अदृश्य, यानी आंखों के परे, दिखाई नहीं पड़ता, अकल्पनीय अर्थात बुद्धि की शक्ति के परे है, या मन की शक्ति, कल्पना जहाँ तक मैं समझता हूँ मन के द्वारा अंदाजा लगाने का कार्य बुद्धि का होता है, चित्त, यहाँ चित्त के द्वारा होता है, उससे परे है, तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। परिवर्तन किसका होता है इसके बारे में आपको याद है, छह प्रकार के परिवर्तन होते हैं शरीर के, जन्म लेना, वृद्धि होना, अस्तित्व होना, प्रजनन करना, फिर क्षय होना और फिर मृत्यु हो जाना। ये छह के छह चीज आत्मा के संग नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले भक्त बता रहे थे कि उनके घर में किसी को शारीरिक कष्ट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस ज्ञान को सुनने मात्र से हृदय में शांति का अनुभव होता है। और इसके बारे में सुनने मात्र से देखो उनका क्या हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये सुनने मात्र से हमारे हृदय में शोक और बढ़ने लग जाता है। शब्द का कितना प्रभाव होता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, और अगर आप इस चीज को देखें, बार बार भगवद गीता के प्रथम या दूसरे अध्याय से लेकर के आखिरी अध्याय तक शोक करने के लिए बड़ा भगवान मना कर रहा है, क्योंकि भगवान वास्तविक रूप से हमारे शरीर की वस्तुओं की नगण्यता को, नगण्यता इनसिग्निफिकेंस को समझते हैं। आप समझ रहे मेरी बात, तुच्छता, ये अच्छा शब्द, तुच्छता को समझते हैं। उनके पास तो कितना वॉल्यूम है ना एलिमेंट्स का, उनसे सारा शरीर आए हैं, उनसे सारी पृथ्वी आई है, वो देख रहे हैं और वो शाश्वत टाइम फ्रेम से देखते हैं। क्षण क्षण के शरीर जो हमारे चेंज हो रहे हैं उसमें जिसको भगवान देख रहे हैं, कह रहे हैं उनसे, उनके लिए शोक मत करो। और सही बताया तो किसी के लिए भी शोक मत करो। ये तो खतरा सा खराब लगता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, कोई भक्त, जैसे एक भक्त ने आज नमकीन खाया बहुत अधिक, उसका नाम नहीं बताएंगे, तो वो नमकीन खा रहा था बहुत अधिक, कह के प्रसाद है प्रसाद है। अब बाद में अगर वो रोने लग जाए कि आज मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, तो उसके लिए किसको, कौन शोक करेगा बताइए? कोई शोक करने की बात
करेंगे?
कोई बात, कोई मतलब नहीं शोक करने के लिए। ज्ञान अज्ञान में व्यक्ति खुद ही गलत कार्य कर रहे हैं और निति के लिए कार्य कर रहे हैं गलत, तो फिर अब शोक क्या किया जाए? शोक नहीं करना चाहिए, ज्ञान देने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आप देखिए, डॉक्टर शोक नहीं करता है हमारी बीमारी को देखने, आप देखेंगे ना, बल्कि हमको धैर्य देता है, ठीक है ठीक है आप बीमार हो कोई बात नहीं, अब दवा दीजिए। तो भगवान ही बात बोले, शोक मत करो, शोक मत करो। कोई तुमसे पाप हुआ है कुछ भी, आप इसको उस पर शोक मत करो, उस पर कैसे कार्य करिए कि आप उसको छोड़ करके भगवान की भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते, उस पर लटके रहने से फायदा नहीं है कुछ। एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, अभी मैंने पढ़ा था, किसी भक्त के स्टेटस में था, बहुत अच्छा था, कि जो हमारा भूतकाल है वो एक हमारा जीवन का एक लेसन है, लेसन क्या बोलेंगे, शिक्षा है। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, आर पास्ट इज अ टीचिंग ऑफ अ लाइफ, इज नॉट अ लाइफ सेंटेंस। लाइफ सेंटेंस मतलब समझते हैं, जो कोई मर्डर कर देता है तो उसका उम्र कैद, हमारी उम्र में हमारा जो पास्ट है वो एक शिक्षा है, उम्र कैद नहीं है। अर्थ समझते हैं, अपने भूतकाल में जीते मत रहिए, मैं तो ये कर दिया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा, भगवान मेरा उद्धार नहीं कर सकते, ये वो नहीं, उसको उम्र कैद नहीं, मतलब वो जीवन भर अपने पास्ट के बारे में सोचते नहीं रहना चाहिए। अब भगवान इस बात को बोले, शोक मत करो, तुम्हारे जगत से कोई संबंध नहीं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। इसमें हमने पहले भी चर्चा करी है कि जो वस्तु दृश्य होती है, एक दृश्य प्रभाव को देखकर हम अदृश्य कारण का अनुमान करते हैं। मैं फिर से रिपीट करूं, समझ में आ रही बात? दृश्य प्रभाव को, जो हमारे सामने दिख रहा है, उस प्रभाव को देख करके हम अदृश्य कारण का, जो उस प्रभाव का कारण है, उसको हम अंदाज लगाते हैं। जैसे क्या आपको यहां पे पंखा चलता हुआ दिख रहा है? सिंपल, पावर हाउस में टरबाइन चल रहा है? जो इंजीनियर है वो आसानी से मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। टरबाइन चल रहा है, टरबाइन समझता ना, जैसे टरबाइन बोलेंगे ना, टरबाइन नहीं, जनरेटर, जो भी वहां का टरबाइन जनरेटर है, वहां का अल्टरनेटर चल रहा है, तो इससे आप समझ सकते, तभी आप समझ रहे हो कि क्योंकि ये पंखा चल रहा है, कहीं ना कहीं बिजली उत्पादित हो रही, कहीं पे भी हो रही है, हमें ये नहीं पता कहाँ हो रही, निश्चित कहीं ना कहीं तो हो रही है, और उसी क्षण तुरंत हमारे पास आती है, स्टोर भी नहीं होती बिजली, हम जानते हैं, तो ना तो आपको बिजली दिखाई पड़ रही है, ना पावर हाउस दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप इस दृश्य प्रभाव को देख करके बिजली को आप स्टोर नहीं कर सकते। ये जो बिजली हमारे पास आ रही है, स्टोर्ड फॉर्म में नहीं, जनरेट होती है तुरंत आती है, जनरेट हो रही तुरंत आती है, एक क्षण में। तो जिस प्रकार से जो अग्नि है वो स्टोर नहीं होती है,
जैसे जनरेट हो रही है और हमारे पास आ रही है, तो हम लोग पावर हाउस का अंदाज़ा लगा सकते हैं ये समझते हुए कि यहाँ पे बिजली आ रही है। और जब बिजली कट जाती है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने बिजली को काट दिया है, या किसी कारणवश अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है तो पावर हाउस बंद हो गया या ग्रिड फेल हो गई। भले ही हम ग्रिड का फेल होना का अर्थ भी ना समझें या ग्रिड फेल होती हुई ना दिखें, लेकिन प्रभाव के कारण जो हमें दिख रहा है उसके अनुसार हम कारण का अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आत्मा अनुभव अनुभव गम्य है, मतलब हम किस प्रकार से आत्मा का अनुभव करते हैं, हम भी अनुभव करते हैं कि हम हैं, और हम अपने से अलग वस्तुओं का अनुभव करते हैं, ये चेतना के कारण होता है। चेतना के पास ज्ञान शक्ति होती है और ज्ञान शक्ति दो प्रकार से परिलक्षित होती है, अपने बारे में जानना और अपने से भिन्न वस्तुओं को जानना। लेकिन ये होते हुए भी हम आत्मा के अस्तित्व को सीधे नहीं समझ सकते अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा आंख नाक कान के द्वारा सीधे आत्मा को नहीं समझ सकते। इसलिए हमें श्रुति के प्रमाण पे ही विचार करना पड़ेगा, श्रुति के प्रमाण या शास्त्र प्रमाण को स्वीकार करना ही होगा। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। जैसे किसी बच्चे को देखा जाए तो वो बच्चा एक परिणाम है, उस परिणाम को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका माता पिता किसी ना किसी समय जरूर रहे होंगे। हो सकता है इस समय ना हो, हो सकता है माता हो पिता ना हो, पिता नहीं हो माता हो, लेकिन एक न एक समय में माता और पिता दोनों ही रहे होंगे। इसी कारण से बच्चा परिणाम स्वरूप है। लेकिन पिता के स्वरूप को ठीक ठीक समझने के लिए हमको माता से ही जानना पड़ेगा कि इसके पिता हैं कौन, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका उनका स्वभाव क्या है, सब कुछ जानने के लिए हमको माता के द्वारा ही जानना पड़ेगा। इसी प्रकार वेद अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। और इसका प्रमाण क्या है? व्यवहारिक ज्ञान में प्रमाणिक या प्राय जिसे कहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग आत्मा की चर्चा को नहीं करते। और ये भी अद्भुत है कि रोजमर्रा की चीजों में हम आत्मा को देखते हैं, उसके लिए हम शोक भी करते हैं, लेकिन हम ऐसी बातें बोलते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, भाई वो गुजर गए, वो चले गए, लेकिन उसके शरीर को हम सामने देखते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि वह व्यक्ति चला गया। तो ये अद्भुत बात है कि व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा, प्रैक्टिकल ज्ञान के द्वारा हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इतना प्रेशर है मटेरियल या भौतिक एनर्जी का हमारी चेतना के ऊपर। इसीलिए आवश्यक है कि ऐसी ऐसी डिस्कशंस को या ऐसी वक्तव्यों को, ऐसी बातों को हम सुने जो आत्मा के संबंध में है और शास्त्रों के अनुसार अनुरूप हैं। आत्मा चेतना है और चेतना चेतन है, वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। ये बहुत अद्भुत बात है। इसको आचार्यगण समझाते हैं और मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर दूंगा। इसको कहते हैं विशेष, मतलब गुण जो है वो गुण धारण करने वाले से अभिन्न ही है और भिन्न भी है। जैसे अगर ये पूछा जाए कि भाई सूर्य से जो प्रकाश प्रस्तुत हो रहा है, कहाँ से सूर्य प्रकाश बोला जाएगा और कहाँ पे इसको सूर्य बोला जाएगा, ये बड़ा मुश्किल है कहना। ये बॉर्डर लाइन ड्रॉ करना कि भाई इसके बाद ये सूर्य का प्रकाश है और इसके बाद ये सूर्य है, ये बहुत मुश्किल है कहना। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश सूर्य नहीं है हम समझ सकते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन फिर भी सूर्य प्रकाश को कभी भी सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता और डिफ्रेंशिएट भी नहीं किया जा सकता क्लियरली। उसी प्रकार से चेतना आत्मा का गुण है और आत्मा भी चेतना है। आत्मा चेतन है यानी चेतना को धारण करने वाला, और आत्मा चेतना भी है, सूर्य के उदाहरण से आप समझ लीजिएगा। और इसको हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। वेदों का कौन सा कथन है? गुणाद आलोकवद विधान सूत्र में आता है। इसका उदाहरण श्रील बलदेव विद्याभूषण भी देते हैं। तो प्रभुपाद यहां बता रहे हैं इसी बात को कि गुणाद आलोकवद, आलोक मतलब रोशनी और उसका गुण क्या है आत्मा का, आलोकवत, आलोक के जिस प्रकार से एक बल्ब पूरे रूम को आलोकित करता है, ऐसे ही आत्मा पूरे शरीर को, शरीर में अपनी चेतना के द्वारा व्याप्त रहती है और आत्मा स्वयं भी चेतना है। अगर आप खाली ये कहेंगे कि आत्मा चेतना मात्र है तो फिर हम आत्मा के स्वरूप की बात नहीं कर सकते, क्योंकि चेतना केवल एक रोशनी है। जैसे अगर आप बोले कि सूर्य केवल रोशनी है, सूर्य की रोशनी है, तो फिर सूर्य का स्वरूप नहीं होगा। लेकिन सूर्य देव है, उनका स्वरूप है और सूर्य का पिंड है, और फिर उसका भी स्वरूप है और सूर्य रोशनी है जिसका स्वरूप नहीं है। तो इन तीनों को मिला करके हम सूर्य के बारे में बात करते हैं। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सूर्य से तो मेरा मतलब है लेकिन सूर्य की रोशनी से मेरा कोई मतलब नहीं है? तो ये धारणा गलत होगी। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, शरीर के परिवर्तनों के बारे में आप जानते ही हैं, और इसके द्वारा हम अपने आप को अलग कर सकते हैं कि शरीर परिवर्तित हो रहा है लेकिन मैं परिवर्तित कभी नहीं होता, और इस कारण से हमें कभी अनुभव नहीं होता कि हम परिवर्तित हो गए। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। तो ये समझना चाहिए कि भले ही हम अविकारी हैं, अविनाशी हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान पर निर्भर हैं। जैसे सूर्य की जो अणु है, जो रोशनी है, उसका जो अणु है वो गुण में सूर्य के समान ही है, लेकिन एक अणु पूरे जगत को उद्भासित नहीं कर सकता है, लेकिन एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करता है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। और ये भी कितनी अद्भुत बात है कि अति सूक्ष्म होने के बाद भी, बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग होने के बाद भी, आत्मा शरीर के अनुसार अपनी शक्ति को प्रकाशित करती चली जाती है। अगर वही आत्मा चींटी के शरीर को चला रही है, वही आत्मा मेंढक के शरीर को चला रही है, वही आत्मा हाथी के शरीर को चला रही है, वही आत्मा ब्रह्मा जी के शरीर को चला रही है, कितना अद्भुत है। लेकिन ये मत कहिए कि वही आत्मा कृष्ण के शरीर को चला रही है, क्योंकि कृष्ण के शरीर और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, शास्त्र इस बात को बोल रहा है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। यानी कि गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान को प्रिय है इस कारण से हम गुरु की सेवा करते हैं, लेकिन गुरु भगवान नहीं है। ये बहुत समझ में आना चाहिए। गुरु जीवात्मा है और जीवात्मा है लेकिन भगवान के महान भक्त हैं, इस कारण से कृष्ण को अति प्रिय हैं। और हमारी हम जो गुरु की सेवा देते हैं वो गुरु स्वीकार करके कृष्ण को देते हैं, ये सब बात भी सत्य है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गुरु की सेवा करें और कृष्ण की सेवा ना करें। हमारा आध्यात्मिक जीवन एक रेल की पटरी की तरह है, इसमें गुरु की सेवा भी आवश्यक है और कृष्ण की सेवा भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि घर में बस खाली गुरु की फोटो हो और बस गुरु को सब कुछ अर्पित कर दो और भगवान के पास चला गया, ये गलत है। गुरु का कर्तव्य है, एक प्रामाणिक गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को सिखाए कि कृष्ण से उसका किस कृष्ण की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। तुम कृष्ण के दास हो, सीखो कृष्ण की सेवा कैसे करना चाहिए, कृष्ण कौन है, ये गुरु को बताने का उसका कर्तव्य है, प्रमाणिक गुरु का। ये नहीं है कि कृष्ण का स्थान गुरु स्वयं ले ले, ये ढोंगी गुरु होते हैं इस प्रकार के। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के दोहराया गया है। किसी बात को दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। ये आप लोग बोल सकते हैं कि ये बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। तो आप देखिए, जब हम लोग नर्सरी स्कूल में थे या और छोटे में थे तो ए बी सी डी सीखने के लिए कितनी बार रटाया गया था, तब हमने नहीं बोला अरे एक बार सीख तो लिया, ए बोल दिया ना, दोबारा ए बोलने की क्या जरूरत है, ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ ए बी सी डी एफ जी एल ओ एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एल ओ एक्स वाई जेड ऐसे करके हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, खूब मार पड़ती है जब तक अच्छे से रट ना जाए। तो पहले आवश्यक इस ज्ञान को हम लोग कम से कम सिद्धांतिक रूप से समझें और इसके लिए बार बार उसकी पुनरावृत्ति होना आवश्यक है। और भगवान इस बात को बोलते हैं कि सुनने के बाद भी लोग आत्मा को नहीं समझ पाते, जैसे यहाँ बोल रहे हैं अनुभव गम्य है, आत्मा के अनुभव को हम महसूस कर रहे हैं फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आत्मा कौन है, ये क्या है। तो इसलिए ये सारे श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं और उनको बार बार सुनना बड़ा ही प्रेरणादायक लगता है। हरे कृष्णा।